लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है एक मुलाकात कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत सिस्टर लूसी कुरियन से हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं।
प्रेम है मेरे प्रभु,
प्रेम ही मेरा धर्म है। कौन सा जात का है, धर्म का है अथवा वर्ग का है, ये मैं कभी नहीं पूछती। मैं केवल मनुष्य के रूप में देखती हूँ। अगर उसको मेरी सेवा की आवश्यकता है तो मैं उसे उठा लेती हूँ। ये कहना है भारत में माहिर संस्था की संस्थापिका एवं निदेशिका सिस्टर लूसी कुरियन का। उन्होंने एक प्रताड़ित महिला की दर्दनाक मौत से प्रभावित होकर तमाम तिरस्कृत, पीड़ित और निराश्रय महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए माहिर संस्था की स्थापना की है। आज वे इस संस्था के माध्यम से महाराष्ट्र, केरल और झारखंड में हजारों लोगों के जीवन में आशा की नई ज्योति जला रही हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सिस्टर लूसी कुरियन के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रहे सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
माहेर इसका मतलब है माँ का घर, और मैं ये शुरू किया था क्योंकि ऐसी एक औरत मेरे पास आया था। उसको रात को सोने का जगह चाहिए था क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बहुत तकलीफ दे रहे थे, दारू पिया था, और वो दूसरा औरत के साथ भी उसको कांटेक्ट था। तो उसने वो उसका हस्बैंड बोला था यू हैव टू गेट आउट, रूम से निकल जाओ, पर वो रात को किधर जाएंगे। और वो औरत प्रेगनेंट भी थे, तो वो आके मेरे पास भाग के आई, दीदी मेरे को सोने के लिए जगह दे दी है एक रात के लिए। पर मेरा कॉन्वेंट का रूल्स इतना स्ट्रिक्ट था तो हमको लेने नहीं पाया क्योंकि शी इज ऑल्सो वो प्रेगनेंट भी था करके ससुर लोग डर गए, तो नहीं लेने पाया और मैं उसको वापस भेज दिया। वो उसी रात को उसका हस्बैंड और उसका झगड़ा में वो उसका हस्बैंड ने उसके ऊपर रॉकेल डाल के जला दिया। तो ये बहुत आवाज होने के बाद मैंने भी सुना तो मैं उधर भाग के गई। उसके बाद में मेरे को मालूम हो गया यही औरत मेरे पास आई थी, और बहुत कष्ट से उसको मैंने हॉस्पिटल लेके गया क्योंकि हम लोग एकदम गरीबी परिस्थिति का एक कॉन्वेंट में थे, बहुत दूर, कुछ भी गाड़ी ना रिक्शा कुछ नहीं मिलता था। और उसको लेके जाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, लेने के तक वो जिंदा था पर डॉक्टर के पास गए तो समय वो खत्म हो गया। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर कुछ तो कर सकते हैं क्या, वो प्रेग्नेंट थे वो बच्चे को बचाने के लिए। डॉक्टर ऑपरेशन करके मेरे हाथ में दिया वाला बच्चे एक पक गया बच्चा था, एकदम मर गया बच्चा, तो मुझे तो बहुत दुख लगा। मैं ऐसा तो हमेशा देखते थे, बहुत सारा औरत लोग रोड पर है, बच्चे भीख मांग रहे, ये सब मैं देखने के बाद मुझे बहुत दुख लग रहा था। पर मेरे को मालूम नहीं था मैं क्या करेंगे ऐसे लोगों के लिए क्योंकि मैं केरला से है, उधर ऐसे घटना नहीं होता है ज्यादा, पर इधर नॉर्थ इंडिया में आने के बाद मैं कुछ ना कुछ देखने लगा, मुझे लगा कुछ तो करने के, पर मुझे नहीं समझा मैं क्या करूं। और ये इसके बाद में मैं हमारा कॉन्वेंट का ससुर लोग को बताया चलो हम लोग को महिलाओं के लिए कुछ करेगा, तो अपने ससुर लोगों को नहीं समझा, बोली लूसी इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे और इसके लिए ये बहुत तकलीफ उठाना पड़ेंगे। मैं बोली तकलीफ उठाने के लिए मैं तैयार हूँ पर पैसा का मेरे पास कुछ नहीं था। फिर बहुत टाइम लगा पर ससुर लोग ने मेरे को परमिशन दिया, मुझे बोले ठीक है तुमको करने के तो तुम कर लो, हमको कुछ नहीं पूछना। तो फिर मैं बोली ठीक है और ऐसा से निकल के आई। मैं अभी भी होली क्रॉस सिस्टर हूँ पर मेरा जो मैं काम करते हैं वो ससुर लोग ने स्वीकार नहीं किया है, पना भी मेरे को बहुत मदद मिलता है सब तरह से। ये सब अच्छी अच्छी लोग मेरे साथ जोड़ा करके मुझे कर सका। 10,000 के ऊपर मेरे पास लोग आके चले गए। जब भी उसका प्रॉब्लम सेटल होते समय मैं उनको घर में पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। नहीं होंगे तो उसको मैंने कुछ तो कुछ काम देने के लिए कोशिश करते हैं। और अभी मेरे पास 940 चिल्ड्रन है, अलग अलग घर में रखा है। ऐसा जो महिला मेंटल हो गया, रास्ते में भटकते रहते हैं, उनको भी हम उठाते हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको ठीक करने को देखते हैं। नहीं है तो अपने पास ही रहता है और उनका एड्रेस मिल जाएंगे तो उसका घर में पहुंचा देते हैं। और जो अपंग है उनके लिए भी एक घर हम लोगों ने शुरू किया है। जो बुढ़ी है कोई देखभाल करने को नहीं है, उनको मंदिर के उधर चर्च के उधर छोड़ देते हैं, उनको भी हम लोग उठाते हैं और लेके आते, उसको देखभाल करते हैं। अभी मेरे पास 7 घर भक्त बुढ़ी लोगों के लिए है और मेंटल लोगों के लिए अभी 5 घर हैं। और पुरुष लोगों के लिए भी जो निराधार होमलेस मैन, उनके लिए 3 घर शुरू किया है, अलग अलग जगह पर है। बच्चों के लिए अभी 37 हाउसेस है, 940 बच्चे मेरे साथ रहते हैं।
जब इस काम की शुरुआत कर रहे थे आप किन चुनौतियों से होकर गुजरे?
शुरू में लोग सोचा था मैं इनको बाप्तिस्मा करने को लेके जा रही है करके, और लोग मुझे पत्थर से मारने लगा, मेरे मुंह पर थूका, मुझे मारने के लिए आया तो लोग ने, क्योंकि उनको लगा मैं क्रिश्चियन बनाने के लिए उनको लेके जा रहे करके। बाद में लोगों को समझा, फिर वो सब बंद हो गया धीरे धीरे। और दूसरा ये कि जब हम शुरू किया था समय मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, तो मैं इवनिंग आने के बाद, रात का आने के बाद, जो वेजिटेबल वेंडर लोग है, नई बिक गया बाजी कभी कभी रोड पर फेंकते हैं, मैं वो सब बाजी उठा के लेके आता था हमारा घर में खाना पकाने के लिए। और ग्रोसरी शॉप में भी जो मिक्सअप हो गए ना, वो चिड़िया के लिए रखते थे, वो खाना मैं लेके आते उनको, हमारे बच्चों को और हमको खाने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं था। बहुत हाल बेकार था। फिर अभी लोग हमको मदद करने लगा, इसलिए मुझे इतना सारा लोगों को संभाल सकते हैं। बहुत अच्छे लोग मेरे पास जोड़ा हुए हैं।
आप किसी को नहीं देखते होंगे कि कौन सा धर्म का है, किस जाति का है, कितना बड़ा है, क्या है, सबको अपने पास उठा के लाते होंगे। तो ऐसे में आपको वो कौन सी भावना है जो सबको अपनाने के लिए प्रेरित करती
है? या मेरा इसमें से है कि अभी जब मैं पुरुष को, नहीं तो महिलाओं को, नहीं तो बच्चों को रोड पर देखते समय कभी हम पूछेंगे नहीं वो कौन सा जात का है, कौन सा धर्म का है, कौन सा उसका क्लास क्या है, कुछ भी नहीं पूछते। उसको जरूरी है मेरा सेवा के लिए, तो मैं उनको उठाती हैं। और हिंदी में बोलते मानुष की उतना अच्छा हम देखते हैं, कभी मैं देखता नहीं धर्म क्या है करके। और हमारा घर में दर रोज सुबह और शाम को प्रार्थना होता है, पन कौन सा भी दे भगवान का नाम नहीं बोलते है, पन सर्वधर्म समभाव, वो हिसाब से हम काम करते हैं। एंड ऑल्सो आई स्पीक व्हेन पीपल आस्क विच रिलीजन यू बिलोंग टू, आई से लव इज माय रिलीजन।
तो सिस्टर लुसी आपको बहुत धन्यवाद, आपको बधाई और शुभकामनाएं।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक महामूर्ख, लेखक हैं संतोष जोशी। श्रोताओं, भारत में कई औरतें अपने पति का नाम लेने से हिचकिचाती हैं, अपने पति को काफी पारंपरिक तरीके से बुलाती हैं, जैसे वो हमेशा आप या पप्पू के पापा या सुनते हो कहकर काम चला लेती हैं। ऐसा पुकारने से वह सम्मान देती हैं। इस तरह बुलाने का एक और फायदा है कि पत्नी को कभी भी दूसरों के सामने अपने पति को बुलाने का तरीका बदलना नहीं पड़ता है। कभी कभी पत्नियों द्वारा अपने पति को दिए गए नाम अटपटे लगते हैं। ये प्यार भरे नाम नहीं होते, लेकिन इनके पुकारने का तरीका बेहद अपनापन भरा होता है। हालांकि पति अक्सर दिखाते हैं कि उन्हें ऐसे नाम अच्छे नहीं लगते या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन ही मन पत्नी को इन नाम को पुकारते हुए याद करते हैं। प्यार भरे नाम लेने से दोनों के बीच अपनापन और बढ़ेगा। आज के नाटक में पति महाशय को पत्नी द्वारा रखे गए उपनाम का पता चला तो वे आग बबूला हो गए। क्यों? इस क्यों का जवाब मिलेगा इस कहानी को सुनने के बाद। तो आइए सुनते हैं संतोष जोशी का लिखा नाटक महामूर्ख।
अरे सुरेश, सुरेश सुनो, बहुत दिनों के बाद नजर आया है। अरे सुरेश, इतनी जल्दी में क्यों हो भाई? कहाँ जा रहे हो?
अरे किशन, अरे भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब तुम तो जानते हो, घर का सामान लेने जा रहा था। हाँ, अब ये क्या है कि घर गृहस्थी जो है ना, ये चैन लेने ही नहीं देती है। बस अभी ऑफिस से आया ही था कि पत्नी ने बाजार का काम पकड़ा दी।
अच्छा, अरे वो तो ठीक है, लेकिन सुन, मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता था।
अच्छा, बोल ना, बोल क्या बात
है? यार अब मैं तुझे कैसे बताऊं, तुझे कहीं बुरा लग गया तो? नहीं यार, रहने दे यार, रहने दे।
हाँ, मुझे बुरा लग जाएगा, ऐसी क्या बात हो सकती है? अरे भाई बता यार, तू बता तो सही, थोड़ा बता ना।
अच्छी बात है, अब तू नहीं मानता तो सुन।
हाँ,
तेरी पत्नी तुझे महामूर्ख कहती है।
क्या? मेरी पत्नी मुझे महामूर्ख कहती है?
हाँ
भाई। यार तुझे कैसे मालूम?
अरे चौक बाजार में अपने मोहल्ले की महिलाएं आपस में बातें कर रही थी।
क्या?
सब हंस रही थी। वो तो मैं अचानक वहां से गुजर रहा था और मैंने सुन लिया।
ठहर ठहर ठहर, तू चौक बाजार में जा रहा था, तूने अचानक सुन लिया महिलाएं बात कर रही थी? अच्छा, तो ये बात है।
हाँ यार, मुझे बहुत बुरा लगा। इस तरह अपने पति को मूर्ख कहना अच्छा थोड़ी है, और महामूर्ख कहना तो बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है, पति का अपमान है ये।
यार किशन, तूने बहुत अच्छा किया कि मुझे बता दिया। मेरी पत्नी मुझे महामूर्ख कहती।
हाँ,
पीठ पीछे महिलाओं के बीच में। ठीक है, धन्यवाद, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सावित्री को नहीं छोड़ूंगा, हैं? अभी घर जा ही रहा हूँ। आज उसे पता चलेगा कि पति को माँ मूर्ख कहने का क्या अंजाम होता है। आज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा सावित्री।
अरे देखना देखना सुरेश, जरा संभल के भाभी से ज्यादा झगड़ा मत करना। क्या, मैंने अपना काम कर दिया, पलीते में आग लगा दी, अब आएगा मजा।
सावित्री, सावित्री, सावित्री कहाँ हो, कहाँ हो तुम?
क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सामान लाए कि नहीं?
अरे सामान को छोड़ो, मैं तुमसे खास सवाल पूछना चाहता हूँ।
सवाल? पहले सामान लेकर आओ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, फिर जो भी पूछना चाहते हो पूछ लेना।
ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुमने मोहल्ले की औरतों में जब तुम बैठती हो ना, तो किसी को तुमने महामूर्ख कहा है? मेरा मतलब है महामूर्ख।
मैं तो तुम्हारे सिवा किसी को मूर्ख नहीं कहती, मेरा मतलब है महामूर्ख।
क्या कहा तुमने, मेरे सिवा तुम किसी को महामूर्ख नहीं कहती, मतलब मुझे कहती हो? हैं?
हाँ।
देखा,
मूर्ख नहीं महामूर्ख।
हाँ, वही बात है कि मेरे पूछने के पहले ही तुमने कबूल लिया, तुमने मुझे महामूर्ख कहा।
हाँ तो सच कहती हूँ, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को महामूर्ख कहा ही नहीं आज तक।
हाँ, वही वही बात है, वही बात है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ।
नाराज? अरे तो क्या हुआ, सभी पत्नियां अपने पति को महामूर्ख ही कहती हैं। तुम तो सामान ले आओ, जाओ जाओ जल्दी से, ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई?
असंभव असंभव। अरे सभी पत्नियां अपने पति को कितनी देखता हूँ मैं, कितनी प्यार से देखती हैं, कितनी इज्जत करती हैं। एक काम करता हूँ, जरा पता लगाता हूँ कि पत्नियां अपने पति को मूर्ख कहती हैं या नहीं। मूर्ख नहीं, महामूर्ख कहती हैं या नहीं, जरा खोज करनी पड़ेगी। ठीक है, देखता हूँ। नवीन, अरे भाई नवीन, दरवाजा खोलो नवीन।
अरे आ रहा हूँ भैया। अरे आओ आओ सुरेश भाई आओ। अरे क्या हाल है? अरे लगता है किसी से लड़कर आ रहे हो। हाँ
लड़कर आ रहा हूँ, तुम्हारी भाभी से। अरे लड़ना क्या है, उसने मुझे अपमानित किया है पूरे मोहल्ले में, मेरी पोजीशन खराब हो गई है।
क्यों क्यों, ऐसा क्या हुआ भाई?
अरे उसने मुझे महामूर्ख कहा है, वो भी मोहल्ले की औरतों के बीच में। आज जब मैं बाजार जा रहा था तो मोहल्ले की कुछ औरतें मेरी तरफ देखकर हंस रही थीं, आपस में इशारे से एक दूसरे को कुछ कुछ कह रही थीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें महामूर्ख कहती है?
नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कभी नहीं, महामूर्ख तो कभी नहीं, छी 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 छी, कभी नहीं।
अरे तुम यही हो अभी तक?
नमस्कार भाभी जी।
नमस्कार भाई साहब, बैठिए ना।
ठीक है।
अरे तुम अभी तक यही खड़े हो? मैंने तुम्हें कपड़े सुखाने के लिए कहा था ना। तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा।
हाँ बेवकूफ है। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ, कपड़े सुखा दूंगा। अच्छा फिर मिलेंगे दोस्त।
अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा मैं भी भाभी जी चलता हूँ, फिर मिलेंगे ना जरूर। अच्छा भाभी जी नमस्कार।
अरे सुनिए तो भाई साहब। अरे अरे चले गए क्या? अरे सुनिए रुकिए।
अरे सावित्री सावित्री।
बोलो।
अरे भाई ये लो सामान ले आया।
अच्छा अच्छा ले आए सामान।
हाँ, सावित्री मैं अभी मेरे दोस्त नवीन के यहाँ गया था। उसकी पत्नी उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी।
अच्छा?
कह रही थी तुमने कपड़े क्यों नहीं सुखाए, और पता है उसने नवीन को बेवकूफ कहा।
क्या बेवकूफ?
मेरे सामने ही। सावित्री तुम कितनी अच्छी हो, तुमने किसी के सामने मुझे कभी महामूर्ख नहीं कहा।
अरे सभी पत्नियां अपने पति को कुछ न कुछ नामों से सजाती रहती है। पर जानते हो ये जो कुछ कुछ कहा जाता है ना, प्यार से कहा जाता है।
अच्छा।
मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें कहती हूँ महामूर्ख।
सच?
हाँ, मेरे महामूर्ख पति जी। हाँ
फिर वही महामूर्ख।
महामूर्ख। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इस नाटक के कलाकार थे भवानी कौल, सुधीर तेलंग, दुर्गेश नंदिनी और संतोष जोशी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।